उन्होंने भगवान के विग्रहों की स्थापना की है। ये सारे स्थान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भक्तों के संग में ऐसे स्थानों में हमें जाना उचित है। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर और अन्य आचार्य ये भी बताते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाने का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। साधारणतः जो थोड़े धार्मिक वृत्ति के लोग होते हैं वो भी तीर्थ स्थानों में जाते हैं, और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो तीर्थ स्थानों में जाते हैं परंतु कोई धार्मिक दृष्टि से नहीं, एक पर्यटक के दृष्टि से जाते हैं, टूरिस्ट, या किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं। परंतु जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे किसी धार्मिक कार्य के लिए ही जाते हैं। परंतु ये बहुत सारे परंतु हैं, धार्मिक वृत्ति के होने के बाद भी अनेक लोगों को ये पता नहीं होता है कि धर्म का सार क्या होता है। धर्म का सार, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अन्य समस्त प्रकार के धर्मों को त्याग दो हे अर्जुन, एकमात्र मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना, शरणागत भक्त होना, ये समस्त प्रकार के धर्मों का सार है, चरम सीमा है धर्म की। सर्वोपरि धर्म भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाके उनकी शुद्ध भक्ति करना है। और यदि कोई भक्त ऐसा सोचे, यदि उसके मन में कोई संकोच हो कि अरे अन्य प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण के धर्म में के शरण में जाएंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे जो भी मेरे आराध्य हैं वो मेरे ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, या मुझे सुरक्षा कहाँ से मिलेगी इत्यादि, तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आश्वासन देते हैं कि माँ शुचः, हे अर्जुन डरो नहीं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे भय से मुक्त कर दूंगा, समस्त प्रकार के सुरक्षाओं को मैं प्रदान करूंगा। भक्ति में आने के पहले हमने इतने जन्मों में बहुत सारे पाप किए हैं, तरह तरह के पाप किए हैं, उनमें से अनेक पाप ऐसे हैं जिनका फल हमें प्राप्त हो चुका है, दुख के रूप में हम भोग चुके हैं। परंतु नए नए पाप हम करते रहते हैं, कभी कभी जानते हुए, कभी कभी नहीं जानते हुए। तो ऐसे पापों की पूंजी और थोड़े मात्रा में पुण्यों की पूंजी भी एकत्र करते हुए हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में कोटि कोटि जन्मों से चलते आए हैं। और अब जब मूल्यवान मनुष्य देह में हमें भगवान श्री कृष्ण के संदेश को पाने का सुअवसर मिलता है तो इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। तो जो लोग धार्मिक होते हुए भी सर्वोपरि धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, वो जब ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो उनकी भावना क्या होती है, वो सोचते हैं कि चलो हमने जाने अनजाने में कोई पाप किए होंगे तो ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके, ऐसे पावन नदियों में, कुंडों में स्नान करके, भगवान का दर्शन आदि करके हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो लोगों का अधिकतर तीर्थ स्थानों में जाने का उद्देश्य क्या होता है, पापों से मुक्त होना, जो पाप उन्होंने पहले से किए हैं उनसे मुक्त हो जाना। और एक प्रकार का ये प्रायश्चित भी होता है। परंतु श्रील रूप गोस्वामी बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे बताया गया है कि ये सर्वोपरि धर्म नहीं है, इस प्रकार का जो प्रायश्चित है वो थोड़े समय के लिए फल प्रदान करता है, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, परंतु हमारे हृदय के भीतर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होगी। यदि हमें पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट करनी है सदा के लिए, सदैव सदा के लिए एक हमें उपाय ढूंढ निकालना है ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएं और भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जगत को प्राप्त करें, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। तो केवल तीर्थ स्थानों में जाके पापों को धुलाने का उद्देश्य रखना ये इतना उचित नहीं है। ठीक है, कम से कम ये लोग धार्मिक तो हैं, कम से कम इतना तो मानते हैं कि पाप किए हैं हमने और पापों को नष्ट करना चाहिए, और पापों को नष्ट करने के लिए कम से कम भगवान के स्थान में जाते हैं, उनके भक्तों के स्थान में जाते हैं, कोई दूसरा और पाप नहीं करते, कम से कम ये लोग नास्तिक तो नहीं हैं। फिर भी क्योंकि उनकी समझ, उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है, वो इसलिए अपने पापों को मुक्त करने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सदैव मुक्त हो जाने के लिए केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए भागवतम में कहा गया है कि हमें तीर्थ स्थानों में केवल पाप धोने के लिए नहीं जाना चाहिए, बल्कि वहाँ जाके भक्तों के संग में रहना चाहिए और भक्तों से भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। हमें पर्यटक की तरह नहीं आना चाहिए, यद्यपि जब हम आते हैं तो मन भी प्रसन्न हो जाता है, पर्यटन भी हो जाता है, परंतु ये आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का उद्देश्य भी समझ लेना चाहिए। तो ऐसे भारतवर्ष में सैकड़ों सैकड़ों पवित्र स्थान हैं जिनको हम तीर्थ स्थान कह सकते हैं, जिनको हम धाम कह सकते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। भारतवर्ष जो कि पुण्य भूमि है, जहाँ पर ऐसे तीर्थ स्थान भरे पड़े हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक और बीच में भी सब जगह, शायद ही कोई ऐसा प्रांत होगा भारत में जहाँ कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान न हो। तो कितने सौभाग्यशाली हैं हम, तो अवश्य हमें जाना चाहिए इनमें। तो क्यों जाना चाहिए, आज हम लोग सब यहाँ आए हैं, अभी थोड़ी देर में हमें प्रसाद लेना है, तो पानीहाटी चिड़ा दही उत्सव आदि के बारे में प्रसाद के बाद में हम चर्चा करेंगे, नहीं तो सबको प्रसाद की बहुत याद आएगी और फिर ध्यान से सुन नहीं पाएंगे प्रवचन, ऐसे मजाक में कह रहे। तो ठीक है, तो तीर्थ स्थान में आना है तो हम क्यों आते हैं, ये भी एक तीर्थ स्थान है ना, यहाँ पर हम आए हैं सोदे मठ में, यहाँ रमा त्रिविक्रम मंदिर है, वादिराज स्वामी का ये भजन स्थान है, तपस्या भूमि है, शायद उनकी समाधि भी यहाँ पे है ना, समाधि भी है। तो हम क्यों आते हैं तीर्थ स्थानों में, सबसे पहली बात मुख्य कि शास्त्रों में बताया गया है कि हमें जाना चाहिए, हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ जाके भगवान के बारे में और उनके भक्तों के बारे में सुनने के लिए, साधन भजन को और तीव्र बनाने के लिए। तो ऐसे स्थानों का जो आध्यात्मिक प्रभाव है वो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। देखिए, देश काल पात्र तीनों का प्रभाव होता है। देश अर्थात स्थान, यदि हम कोई ऐसे स्थान में जाएं जहाँ पे शराब लोग बेच रहे हैं, पी रहे हैं, उसका प्रभाव एक प्रकार का होता है। कोई जुआ का अड्डा है, वहाँ भी उसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरी ओर हम जब किसी पवित्र स्थान में आते हैं, जैसे आज हम यहाँ आए हैं, तो इसका प्रभाव कुछ और ही होता है, अलौकिक होता है। तो दोनों स्थानों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उनमें जो गुण की प्राप्ति हम कर सकते हैं वो भिन्न है। यहाँ पे आके जो हमारे चेतना के ऊपर असर पड़ेगा और वहाँ शराब के अड्डे में जाके जो हमारे चेतना के ऊपर असर पड़ेगा, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो देश का भेद होना आवश्यक है। काल समय, जैसे हम जानते हैं कि थोड़े समय ऐसे हैं जो शुभ माने जाते हैं, थोड़े समय ऐसे होते हैं जो अशुभ माने जाते हैं, तो हम भेद करते हैं। इसलिए तो धार्मिक कार्यों के लिए सही मुहूर्त ढूंढते हैं, चाहे विवाह हो, कुछ भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हो, गृह प्रवेश आदि, साधारण धर्म के स्तर पे ऐसे सही समय को ढूंढ निकाला जाता है। और थोड़े ऐसे समय होते हैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल में हम उठते हैं, स्नान करके भगवान के बारे में भगवान का नाम जप आदि करते हैं, इसमें आध्यात्मिक शक्ति अधिक है। और पात्र, पात्र अर्थात व्यक्ति या परिस्थिति, जब हम नास्तिक लोगों के बीच में रहते हैं तो उसका प्रभाव एक प्रकार का होता है, जब हम भगवान के श्रद्धालु भक्तों के बीच में रहते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। तो देश काल परिस्थिति या देश काल पात्र में हमें भेद करना चाहिए। तो यहाँ पर इस स्थान में हम आए हैं, भक्तों के बीच में बैठे हैं, तो इसका जो प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर होगा वो बहुत गहरा होगा। यदि हमने हमारे हृदय की खिड़कियाँ खोल दी, यदि हमने सही भाव से इस यात्रा को स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार की भावना मेरे प्रति रखता है मैं भी उसके प्रति वैसे ही व्यवहार करता हूँ। यदि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान की श्री मूर्ति को देखकर सोचते हैं कि ये तो केवल पत्थर है, ये तो केवल प्रतिमा है, तो फिर भगवान भी हमारे लिए वैसे ही बने रहेंगे। परंतु जो श्रद्धालु भक्त है, वो जो भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन करता है, तो वो ये नहीं सोचता है कि ये तो केवल पत्थर है, वो तो जानता है कि ये तो साक्षात प्रत्यक्ष भगवान है जो मेरे आँखों के सामने विराजमान है। भगवान बड़े कृपालु हैं और ऐसे कृपा करके हमारे सामने प्रकट हुए हैं, हमें दर्शन देने के लिए, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। तो जिस भाव में हम भगवान और भगवान के भक्ति को स्वीकार करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर टी वी चालू करके कोई मादक द्रव्य लेना शुरू करे तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या फ़ायदा। उसी प्रकार में तीर्थ स्थान में जाके कोई सिनेमा देखने बैठे, कुछ करे, क्या फ़ायदा। भक्तों के बीच में आए लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना वो देखते रहे, काम करते रहे, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, परंतु हम हमारे फ़ोन के ऊपर हैं तो क्या फ़ायदा। इसलिए कम से कम यहाँ जब हम आए हैं, कम से कम जब हम सत्संग में बैठे हैं, तो अभी आप भूल जाइए कि आपके पास कोई फ़ोन है। ठीक है, कबूल है, कितने भक्तों को कबूल है, हाथ गिरी ऊपर। अभी आपके पास फोन है ही नहीं, ठीक है? तो यदि है आंखों के सामने उसको भी छुपा दीजिए अभी, ठीक है? तो हम जिस भाव से यहाँ आके स्वीकार करेंगे, यही इसका प्रभाव, इस स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। तो इसलिए हम यदि श्रद्धा के भाव से आएंगे, आतुरता से आएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें श्रीपाद वादिराज स्वामी के समाधि स्थल में आने का अवसर मिला, यहाँ पे सोदे मठ में आके रमा त्रिविक्रम भगवान का दर्शन करने का अवसर मिला, इतने आतुरता से श्रद्धा से हम रहेंगे तो इस स्थान का प्रभाव और यहाँ सत्संग का प्रभाव और अधिक होगा। इसलिए अभी आप भूल जाइए न केवल आपका मोबाइल फोन, परंतु ये भी भूल जाइए कि आप कहाँ से आए हैं, आपका व्यवसाय क्या है और आपका घर में क्या क्या समस्याएं हैं, वो सब भूल जाइए। अभी केवल भगवान के लिए समय दीजिए। तो ऐसी यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि हमारे संसार के समस्याओं से, संसार में जब उलझ जाते हैं उससे हम निकल लेते हैं, ज़बरदस्ती बाहर आते हैं, और केवल चाहे वो आधे दिन के लिए हो, एक दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, हम केवल भगवान की बातें करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। ऐसा बहुत आवश्यक है। संसार का प्रवाह बहुत तीव्र है, हमको बहा के ले जाता है। यद्यपि हम भक्त हैं परंतु जब हम मंदिर के बाहर जाते हैं तुरंत प्रवाह हमको ले जाता है। फिर हमारे घर की समस्याएं, हमारे व्यापार की समस्याएं, इसमें मन इतना विचलित हो जाता है, उलझ जाता है, हम बंध जाते हैं उन चीज़ों में। इसलिए कभी कभी वहाँ जब हम धारवाड़ हो, हुबली हो, कोई भी स्थान जहाँ हम निवास करते हों, बीच बीच में मंदिर में जाना बहुत आवश्यक है। परंतु जब मंदिर के बाहर आते हैं क्योंकि मन फिर से दूषित हो जाता है, इसलिए इस तरह की यात्राओं में आना बहुत आवश्यक है। कम से कम एक दिन के लिए तो हम पूरी तरह से हमारे संसार से अलग हो गए। तो आज यहाँ पर आप इस सुंदर स्थान में आए हैं, हम सब आए हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है हम सब के लिए। यहाँ पर आप सब ने दर्शन किया है ना, रमा त्रिविक्रम। त्रिविक्रम अर्थात कौन? भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु। रमा अर्थात कौन? रमा कौन है? रमा हाथों पर कहा? राधा रानी ने, परंतु मूल यहाँ त्रिविक्रम भगवान विष्णु का रूप है। तो भगवान विष्णु के साथ कौन रहती, उनकी संगिनी कौन है? लक्ष्मी, महालक्ष्मी। तो रमा देवी महालक्ष्मी है, महाविष्णु के साथ रमा देवी रहती है। तो महालक्ष्मी या लक्ष्मी देवी का और एक नाम है रमा। राम और रमा में अंतर है। रमा देवी ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी रमा देवी के बारे में और महाविष्णु के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर वादिराज स्वामी रहे, जैसे मैं अभी अभी आए, क्योंकि मैं भी पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ, तो सदायोगी प्रभु ने मुझे बताया कि सोदे मठ, जो कि अष्ट मठों का एक मठ है, उडुपी के मध्वाचार्य ने स्थापित किए थे ना, आपको पता है, अष्ट मठ, 8 मठ, उनमें से एक सोदे मठ है। तो यहाँ पर व्यास तीर्थ आए थे, उन्होंने यहाँ पे इस मठ की स्थापना की, जो सोदे मठ का ही एक की एक शाखा है। और यहाँ पे अनेक ऐसे उनके शिष्य एक के बाद एक पीढ़ियाँ बीत गए, फिर वादिराज स्वामी भी यहाँ पर प्रकट हुए और वादिराज स्वामी भी यहाँ पर रहे, उन्होंने अपनी यहाँ भगवान की सेवा की। तो ये मंदिर जो है, पुराना मंदिर वहाँ पे लगभग कम से कम 700 750 साल तो पुराना होगा ही, लगभग उतना होगा। तो इतने सालों के बाद वो मंदिर है छोटा, और यह भी अच्छा है कि अभी इसको बढ़ाया जा रहा है, सत्संग के लिए सभागृह आदि की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, भक्त लोग आके यहाँ कथा कीर्तन आदि कर पाएंगे। तो यहाँ पर वादिराज जी रहे, अनेक वर्षों तक रहे, और पहले उडुपी मठ में मध्वाचार्य जी ने ऐसी प्रथा बनाई थी, ऐसे नियम बनाया था कि जो अष्ट मठ के स्वामी हैं वो दो दो महीने एक के बाद एक बाल कृष्ण की सेवा करेंगे उडुपी में। एक मठ के पहले दो महीने करेंगे, उसके बाद दूसरे मठ के स्वामी दो महीने करेंगे, ऐसे करके। तो 16 महीने के बाद फिर से अनुभव एक अवसर मिल जाता था, या 14 महीने के बाद, क्योंकि एक सन्यासी करेंगे उसके बाद और 7, तो 14 साल, फिर 14 साल के बाद फिर से उन्हीं को फिर से समय मिलता है, अवसर मिलता है। तो वादिराज जी थे जिन्होंने कि ये नियम बदल लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब केवल 14 महीने के बाद किसी एक स्वामी जी को अवसर मिलता है बाल कृष्ण की पूजा करने के लिए, तो उन्हें वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। तो क्योंकि 14 महीने या इतने कम समय में, 14 महीने में वहाँ रहना पड़ता है, तो कहीं दूसरे स्थान में प्रचार करने के लिए जाना, भ्रमण करना, ये संभव नहीं है। आधुनिक काल में हम केवल एक दिन में दुनिया के दूसरे कोने में पहुँच सकते हैं। आप बेंगलोर में हवाई जहाज़ में बैठ जाइए, 24 घंटे में आप अमेरिका पहुँच जाएंगे। परंतु उस समय ऐसा नहीं था, ऐसे ना हवाई जहाज़ थी, ना कोई रेलगाड़ी थी, ना कोई गाड़ियाँ थी। तो यदि किसी को प्रचार की बात छोड़ी, यदि उनको तीर्थ स्थान में भी जाना होता तो कितने साल लग जाते, क्योंकि उनको पैदल जाना पड़ता। मध्वाचार्य भी स्वयं गए थे उडुपी से, चलते 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 वो बद्रिक आश्रम गए थे, बद्रिक आश्रम से फिर शारदा पीठ भी गए थे काश्मीर में। कैसे गए? चल के गए, उनके साथ उनके शिष्य थे। मध्वाचार्य तो स्वयं वायुदेव के अवतार हैं, इसलिए वो तो तेजी से चल पाए। और ऐसे बताया जाता है कि जब वो हिमालय में गए थे तो पहाड़ के चट्टानों से, एक चट्टान से दूसरे चट्टान, शिखर से शिखर वो छलांग मारते गए, और उनके शिष्य उनके साथ में रह नहीं पाए तो उनको पीछे ही रह जाना पड़ा। तो मध्वाचार्य सीधे गए, व्यास देव जी का दर्शन बद्रिक आश्रम में उन्होंने किया, व्यास देव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया कि वो उनकी भगवद गीता टीका आदि वो देख लें कि वो अधिकृत है, सही है। व्यास देव जी का आशीर्वाद प्राप्त करके वो फिर से वो आ गए। तो खैर, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पुराने काल में कितनी कठिनाई होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। खास करके जब वृद्ध अवस्था में कोई निकलते थे तो वो जब जाते थे तो परिवार के सदस्यों को हरे कृष्ण या जो भी बोलते थे वो चले जाते थे, कि उनको पता था कि शायद हम नहीं आएंगे वापस, और परिवार के सदस्यों को भी पता होता था कि ये नहीं आएंगे वापस, क्योंकि वृद्ध हो गए हैं। अब दक्षिण भारत में किसी स्थान में रहते हैं और गंगा का दर्शन करने जा रहे हैं, तो चलते 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 एक साल दो साल बीत जाएंगे उनको, और फिर वहाँ रहेंगे, फिर और कोई स्थानों में जाएंगे। जब इतनी दूर जाए हैं, गए हैं, तो बहुत सारे तीर्थ स्थानों में जाएंगे, और फिर से लौट के आना कितना कठिन होगा। तो अनेक बार ऐसे होता था कि ऐसे लोग जाते थे अलग अलग स्थानों में, उनका प्राण त्याग देते थे। तो ये तो केवल तीर्थ यात्रा में जाने की बात हुई, तो यदि कोई और प्रचार के लिए भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए कई वर्ष चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति, कोई साधु, कोई स्वामी जी वहाँ वहीं पे उडुपी में रहेंगे तो धर्म प्रचार का कार्य वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसीलिए वादिराज स्वामी ने ये नियम बनाया कि हर 2 महीने के बाद पर्याय बदलेगा नहीं, हर 2 साल के बाद बदलेगा। इसलिए जब कोई एक स्वामी जी अपनी सेवा करते हैं बालकृष्ण की उडुपी में कृष्ण मठ में, फिर उनको और 14 साल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो 14 साल में, उस समय की बात है, 700 साल पहले की बात है ना, तो 7 साल में तो बहुत कुछ भ्रमण करके, प्रचार करके, तीर्थों की यात्रा करके आ सकते हैं वापस। आजकल तो रेलगाड़ी, एरोप्लेन, हवाई जहाज सब है, उस समय नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण नियम और इसका परिवर्तन वादिराज जी ने किया है। तो खैर, ये बहुत प्राचीन स्थान है, 700-750 साल पहले, इसलिए हमें उसी गंभीरता से इस स्थान को लेना चाहिए। कृपया याद रखिए, आपस में भी आप प्रजल्प मत कीजिए, चाहे सत्संग भी ख़त्म हो जाए, जब आप प्रसाद लेने जाएंगे या अपने अपने स्थान में जहाँ भी इधर उधर बैठेंगे, कृपया आज के एक दिन आप प्रयास कीजिए कि आप भगवान के अलावा किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कबूल है सबको? तो आज कोई बाहर की बातें नहीं करनी है आपको, ना घर की बातें, ना व्यापार की बातें, ना किसी और व्यक्ति की बातें। बस अभी ध्यान रख के अपना जप कीजिए और यहाँ इस पावन भूमि का पूरा लाभ आप अवश्य उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो यहाँ 12:30 बजे प्रसाद होता है, आप सुबह सुबह प्रसाद ले चुके हैं, बस में लिया ना सभी ने, यहीं पे लिया, तो सबको भूख लगी है ना? नहीं भी लगी है तो लेना है अभी, क्योंकि प्रसाद का यही समय है, और क्योंकि भगवान का प्रसाद है तो ले लीजिए। फिर प्रसाद लेने के बाद आराम के लिए मत जाइए, वापस आ जाइए। प्रसाद के तुरंत बाद हम यहाँ पे फिर और कथा जारी रखेंगे। आई तो श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री रमा त्रिविक्रम की जय, श्री वादिराज स्वामी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। जैसे महाराज जी ने कहा, अभी तुरंत हम प्रसाद के लिए जाएंगे, 12:30 बजे प्रसाद होगा, उसके बाद ठीक 1:30 बजे 1:30 1:30 बजे दयवेट्टू एलू वापस इले बनी, महाराजरु प्रवचन कंटिन्यू ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ, ಬಚ್ಚೋನ್ ಕಾ ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ರಖಿಯೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಕಹೀಂ ಪೆ ಕುವೆ ಹೈ ಜಲಾಶಯ ಹೈ ತೋ ವಹಾಂ ಪೆ ನಾ ಜಾಯೆ, ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ಬಚ್ಚೋನ್ ಕಾ ಖ್ಯಾಲ್ ರಖಿಯೆ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ತೋ ಜಹಾಂ ಪೆ ಹಮನೆ ಪ್ರಸಾದ ಲಿಯಾ ಥಾ ಸುಬಹ, ವಹೀಂ ಪೆ ಆಪ್ ಜಾಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಲೆ ಸಕ್ತೆ ಹೈ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ।